अध्याय 4 कांच। समुद्रगुप्त का चयन। प्रयाग प्रशस्ति से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकार का प्रश्न हल कर लिया था। यह प्रशस्ति एक सभा के अधिवेशन का दृश्य प्रस्तुत करती है, जिसमें राजा सभासद समुद्रगुप्त और तुल्य कुलज अन्य राजकुमार उपस्थित हैं। सभा के निर्णय को घोषित करते हुए चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को हृदय से लगाकर कहा कि इस पृथ्वी का पालन करो। यह घोषणा करते समय चंद्रगुप्त के हर्षातिरेक रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंसू भर गए। इस निर्णय से सभासद भी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने संतोष एवं प्रसन्नता से सांस ली। परंतु इस घोषणा को सुनकर समान कुल में उत्पन्न राजकुमारों के म्लान पड़ गए। कुछ विद्वानों के मतानुसार इन पंक्तियों से यह प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त ने सिंहासन त्याग कर दिया था और समुद्रगुप्त को अपने स्थान पर राजा घोषित कर दिया था। चाहे इन पंक्तियों में समुद्रगुप्त को एकमात्र चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी घोषित किया गया हो, चाहे चंद्रगुप्त ने सिंहासन त्याग भी किया हो, यह निश्चित है कि उत्तराधिकार का प्रश्न विवादग्रस्त था। संभवतः सिंहासन के लिए कुछ और भी राजकुमार उम्मीदवार थे। चंद्रगुप्त प्रथम और अधिकांश सभ्यों ने समुद्रगुप्त का पक्ष लिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि अन्य राजकुमारों को यह निर्णय रुचिकर न हुआ, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति का कथन है कि समुद्रगुप्त के निर्वाचन को सुनकर उनके मुख म्लान पड़ गए। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभा के अधिवेशन और समुद्रगुप्त के निर्वाचन के तत्काल पश्चात प्रयाग प्रशस्ति किसी युद्ध का निर्णय करती है। इसके अनुसार समुद्रगुप्त के अनेक अति मानवीय कर्मों को देखकर कुछ लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ लोग उसकी वीरता से उत्तप्त होकर उसकी शरण में आ गए। उसने युद्धों में अपकार करने वालों को अपने भुजबल से जीता। इन्हीं पंक्तियों में संभवतः पराजित शत्रुओं के पश्चाताप की बात कही गई है। यह युद्ध किस संदर्भ में हुआ था और यह समुद्रगुप्त के दिग्विजय से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि दिग्विजय से संबद्ध युद्धों का वर्णन इन पंक्तियों के पश्चात प्रारंभ होता है। इस युद्ध का वर्णन समुद्रगुप्त के निर्वाचन के तत्काल पश्चात आता है। इससे अनुमान होता है कि यह उत्तराधिकार का युद्ध था। संभवतः निर्वाचन में पराजित किसी तुल्य कुलज ने सभा के निर्णय को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त का उसके साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में समुद्रगुप्त विजयी हुआ। अब प्रश्न यह उठता है, यह तुल्य कुलज कौन था? संभव है कि यह कांच हो। कांच की मुद्रा। गुप्त मुद्राओं में एक विशेष महत्वपूर्ण मुद्रा मिली है। इसके अग्रभाग पर राजा का चित्र है, जो बंद गले का लंबा कोट, पैजामा, बूट और आभूषण पहने खड़ा है। इसके बाएं हाथ में चक्र ध्वज है और दाहिने हाथ से वह अग्नि में आहुति दे रहा है। इसके बाएं हाथ के नीचे कांच लिखा हुआ है और मुद्रा के चारों ओर वृत्ताकार में गामावजित दिवम कर्म भीरुत मेरे जरियती। पृष्ठ भाग में एक देवी खड़ी है, जिसके बाएं हाथ में एक फूल है। इसी ओर राजा का विरुद्ध सर्व राजोच्छेदता लिखा हुआ है। फादर हेरोस ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया था कि समुद्रगुप्त को अपने भाई के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। संभव है कि यह भाई कांच हो, जिसने कुछ समय पश्चात राज्य किया हो और अंत में जिसे मारकर समुद्रगुप्त सिंहासनासीन हुआ हो। कांच का शासनकाल अत्यल्प रहा होगा, इसी से यह केवल एक प्रकार की ही मुद्रा का निर्माण कर सका। रही सर्व राजोच्छेदता की बात, तो यह विरुद्ध केवल उसके दंभ की सूचना देता है। गुप्त अभिलेखों में प्रत्येक राजा अपने पिता का ही उल्लेख करता है और भाई का नहीं। उदाहरणार्थ चंद्रगुप्त के अभिलेखों में उसके भाई पुरुगुप्त का उल्लेख नहीं है, और इसी प्रकार पुरुगुप्त के अभिलेखों में स्कंदगुप्त का नाम नहीं आता। यदि के पश्चात उसका पुत्र सिंहासनासीन हुआ होता, तो वह अपने पिता कांच का नाम अपनी वंशावली में देता। कांच समुद्रगुप्त का भाई था। इस मत की पुष्टि आर्यमंजु श्रीमूल कल्प से भी होता है। यह ग्रंथ समुद्रगुप्त के एक भाई भस्म नाम बताता है, जिसने 3 वर्ष तक राज्य किया। कांच और भस्म पर्यायवाची शब्द भी हैं। कुछ विद्वानों ने कांच का समीकरण अन्य व्यक्तियों के साथ किया है। यहाँ उन मतों पर विचार करेंगे। घटोत्कच के साथ समीकरण। प्रिशेप और टॉम्स के मतानुसार कांच गुप्त वंश का द्वितीय राजा घटोत्कच था, परंतु यह मत नितांत काल्पनिक है। प्रथमतः घटोत्कच का संक्षिप्त रूप कच्च होगा, कांच नहीं। द्वितीयतः घटोत्कच एक सामंत शासक था, जैसा कि उसकी उपाधि महाराज से प्रकट होता है। कांच ने अपनी मुद्रा प्रसारित की थी, अतः वह एक स्वतंत्र शासक था। समुद्रगुप्त के साथ समीकरण। एलन फ्लीट स्मिथ और डॉक्टर राय चौधरी आदि विद्वानों ने निम्नलिखित आधारों पर कांच को समुद्रगुप्त गुप्त माना है। पहला, समुद्रगुप्त का मूल नाम काच था, परंतु उसने अपनी अनेक विजयों के द्वारा अपना साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत कर लिया, तो उसने अपना नाम समुद्रगुप्त रखा। दूसरा, काच की मुद्रा पर सर्वराजोच्छेत्ता विरुद्ध मिलता है। यही विरुद्ध अभिलेखों में समुद्रगुप्त के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, परंतु इन तर्कों का खंडन किया जा सकता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि समुद्रगुप्त का प्रारंभिक नाम काच था और उसने अपनी विजय समुद्र प्रयत्न विजयों के परिणाम स्वरूप दूसरा नाम समुद्रगुप्त रखा था। गुप्त वंश में दो नामों के राजा मिलते हैं तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त अथवा देवराज भी था, परंतु इस प्रकार के राजा भी अपनी मुद्राएं केवल एक ही नाम से चलाते थे। समुद्रगुप्त ने स्वयं सर्वराजोच्छेत्ता की उपाधि नहीं धारण की थी, यह उपाधि उसके वंशजों ने उसके लिए प्रयुक्त की थी। यह भी कहना असत्य है कि इस उपाधि का प्रयोग केवल समुद्रगुप्त के लिए किया गया हो। प्रभावती गुप्ता ने इस उपाधि का प्रयोग अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए पूना और इत्थपुर ताम्रपत्रों में किया है। रामगुप्त के साथ समीकरण। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि काचगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। गलती से देवी चंद्रगुप्तम नाटक में इसका नाम रामगुप्त लिख गया था। दूसरे शब्दों में रामगुप्त को काचगुप्त समझना चाहिए। डॉक्टर अल्टेकर ने इसी मत को मुद्रा साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करने की चेष्टा की है। पहला, कांच की मुद्राओं में समुद्रगुप्त की मुद्राओं की अपेक्षा अधिक मौलिकता है। मौलिकता मुद्राकारों के अनुभव और निपुणता के साथ आती है, अतः कांच की मुद्राएं समुद्रगुप्त के पश्चात बनी होंगी। दूसरे शब्दों में कांच समुद्रगुप्त के पश्चात सम्राट बना होगा और इस प्रकार उसका समीकरण रामगुप्त के साथ किया जा सकता है। दूसरा, समुद्रगुप्त की व्याघ्र शैली और अश्वमेघ शैली की मुद्राएं कांच की मुद्रा से मिलती जुलती हैं, परंतु समुद्रगुप्त की ये दोनों मुद्राएं उसके शासन काल के मध्य में निर्मित हुई थी, प्रारंभ में नहीं। यदि कांच समुद्रगुप्त की पूर्वगामी राजा कांच समुद्रगुप्त का पूर्वगामी राजा होता तो समुद्रगुप्त उसकी मुद्रा का अनुकरण अपने शासन के प्रारंभिक चरण में ही करता, परंतु ऐसा नहीं है। इससे अनुमान होता है कि कांच समुद्रगुप्त का पूर्वगामी नहीं वरन परगामी नरेश था। इस स्थिति में कांच का समीकरण रामगुप्त के साथ किया जा सकता है। तीसरा, कांच की मुद्रा पर गामवचित्य दिवकर्म भी उत्तम ही जयति लिखा है। समुद्रगुप्त की धनुर्धारी शैली मुद्रा पर अप्रतिरथो विजित्य क्षिति सुचरित्य ही दिवह जयति लिखा हुआ है। ये दोनों विरुद्ध बहुत कुछ समान है, परंतु फिर भी डॉक्टर अल्टेकर के मतानुसार कांच का विरुद्ध निर्जीव है, अतः उसने समुद्रगुप्त के विरुद्ध का अनुकरण किया था। इस प्रकार कांच को समुद्रगुप्त के पश्चात ही रखना चाहिए, अतः वह रामगुप्त हो सकता है। परंतु इन सभी तर्कों का खंडन किया जा सकता है। पहला, यह कहना कठिन है कि कांच की मुद्रा अधिक मौलिक है अथवा समुद्रगुप्त की। दूसरा, यह बात आवश्यक नहीं अनुकरणकर्ता अपने काल के प्रारंभिक चरण में ही अनुकरण करे, अंतिम चरण में नहीं। तीसरा, विरुद्ध की अपेक्षाकृत निर्जीवता अथवा सजीवता का कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता। चौथा, रामगुप्त की ताम्र मुद्राओं के प्राप्ति के पश्चात उसे कांचगुप्त मानना नितांत असंगत है।